जा मानव, छोड़ा उस अनजान ड्राइवर का क्या भरोसा, तू जा और नित्या को घर तक छोड़ करा। पहले नित्या और अब अनीता जी। मानव वहां जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे उन दोनों की बात माननी ही पड़ी। मानव ने बाइक स्टार्ट की, नित्या ने अनीता जी को बाइक किया और उसके पीछे बैठ गई। बाइक स्टार्ट हुई और दोनों वहां से निकल गए। बाइक नित्या के घर के बाहर रुकी। नित्या नीचे उतरी और जाने की जगह मानव के पास आकर खड़ी हो गई। मानव ने हेलमेट का शीशा ऊपर करके उसे देखा। तुम अपना फोन दो, नित्या ने जैसे ही कहा, मानव चौंक गया और हैरानी से बोला, क्यों, मैं तुम्हें अपना फोन क्यों दूं? बस दो ना और लॉक खोल कर देना, मुझे कुछ चेक करना है। मेरे फोन में क्या चेक करना है तुम्हें? मानव ने भौं से कोड़ी और गहरी नजरों से उसे देखा, जिसे नित्या चिढ़ गई। उस दिन मैं तुम्हारा नंबर लेना ही भूल गई, उसके बाद मुझे इतना रिग्रेट हुआ, क्योंकि मेरा बहुत दिल था तुमसे बात करने का, लेकिन मेरे पास तुम्हारा नंबर ही नहीं था। इसीलिए आज मैं याद करके आई थी कि सबसे पहले तुम्हारा नंबर लेना है, ताकि जब दिल करे तुमसे बात कर सकूं। सुबह से चांस ही नहीं मिला और अब मुझे वापस जाना है, लेकिन मैं बिना तुम्हारा नंबर लिए नहीं जाऊंगी। नित्या ने क्यूट सी शक्ल बनाई और अपनी पलकों को झपकाया। मानव के एक्सप्रेशन अब नॉर्मल हो गए थे। मैं बता रहा हूं नंबर, मानव ने जैसे ही कहा, नित्या ने जल्दी से अपना फोन निकाल दिया। मानव ने नंबर बताया, जिसे नित्या ने ना सिर्फ सेव किया बल्कि उसी टाइम कॉल भी लगा दी। ये देखकर मानव की भौहें तन गईं। उसने नाराजगी से उसे घूरना शुरू कर दिया। तुम्हें मुझ पर इतना भी ट्रस्ट नहीं है कि मैं तुम्हें सही नंबर बताऊंगा, इसलिए तुमने कॉल करके कन्फर्म किया? अब तो विश्वास हो गया होगा तुम्हें कि मैं तुम्हें अपना ही नंबर दिया है? नित्या हैरान थी। उसने बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा और घबराकर बोली, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तुम पर डाउट नहीं थी, इसलिए मैंने कॉल नहीं किया था। तुमने मुझे अपना नंबर दिया, अब मैं तो तुम्हें कॉल कर सकती हूँ। लेकिन अगर तुम्हारा दिल करता मुझसे बात करने का तो तुम कैसे करते? तुम्हारे पास तो मेरा नंबर ही नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। अब तुम्हारे पास भी मेरा नंबर चला गया, अगर तुम्हारा दिल करे तो मुझे कॉल कर लेना। मानव शर्मिंदा सा हो गया। ये तो उसने सोचा ही नहीं और बेवजह ही नित्या पर गुस्सा हो गया। अच्छा चलो अब तुम अंदर जाओ, काफी लेट हो गया है। नित्या ने झट से सर हिलाया और अंदर जाने लगी। मेन गेट से अंदर जाते हुए वो पलटी और होठों पर मीठी सी मुस्कान बिखेरे हाथ हिलाकर उसे बाय किया। मानव के होठ भी हल्के से खिंच गए। उसने इशारे से उसे अंदर जाने कहा तो नित्या अंदर चली गई और उसके जाने के बाद मानव भी वहां से निकल गया। नित्या आज बहुत खुश थी। इतने दिनों बाद वो मानव और अनीता जी से मिली थी और आज मानव का बिहेवियर भी उसके साथ बहुत अच्छा था, जिसने उसकी खुशी को डबल कर दिया। नित्या खुशी से चहकते हुए अंदर आई, लेकिन जैसे ही नजर सामने गई उसके कदम एकदम से ठिठक गए। मुस्कुराहट एक झटके में गायब हुई, साथ ही चेहरे का रंग भी उड़ गया और शरीर तो जैसे जम सा गया था। नित्या के सामने मिस्टर शेरगिल खड़े थे, सख्त चेहरा, तनी हुई भौहें और गुस्से भरी घूरती आंखें जो नित्या पर ही टिकी थीं। उन्हें अपने सामने देखकर नित्या के होश उड़ गए थे, हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। इन दिनों उसे उनसे ज्यादा ही डर लगने लगा था। वजह थी उनका गुस्सा। जब से वो मानव से मिले थे उनका गुस्सा पहले से डबल हो गया था और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि नित्या उससे बात करे या मिले, और वो उनके अगेंस्ट जा रही थी, जिससे उनका गुस्सा और बढ़ता ही जा रहा था। इस टाइम कहाँ से आ रही हो तुम? मिस्टर शेरगिल की सख्त रौबदार आवाज वहां गूंजी और नित्या भय से कांप गई। मानव से मिलने गई थी। मेरे मना करने के बाद भी तुम उस लड़के से मिलने गई थी? वो गुस्से से दहाड़े। नित्या, जिसकी हालत पहले ही बहुत खराब थी, जुबान उसकी साथ नहीं दे रही थी। दिमाग जैसे बंद पड़ गया था। वो और ज्यादा सहम गई। दादू, दादू से पूछ कर गई थी मैं। नित्या, क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि इस मामूली से लड़के के लिए अपने डैड के अगेंस्ट जाओगी? नित्या ने जवाब देने की जगह सर झुका लिया। उसके डर से कांपते वजूद और डरे सहमे चेहरे को देखकर मिस्टर शेरगिल ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और उसके पास आ गए। नित्या, क्या आज तक मैंने कभी किसी चीज के लिए तुम्हें रोका है? कभी किसी से मिलने या बात करने से मना किया है? नित्या की हिम्मत नहीं हुई कि सर उठाकर उन्हें देख ले। उनकी आवाज में अब वो सख्ती नहीं थी, फिर भी उसे डर लग रहा था। उसने धीरे से गर्दन दाएं बाएं हिला दी। जब तुम जानती हो कि आज तक मैंने तुम पर कभी कोई रोक टोक नहीं लगाई, कभी किसी से मिलने या बात करने से नहीं रोका, तुम्हें वो सब करने की आज़ादी दी जो तुम चाहती थी, इन सब के बाद अगर आज मैं तुम्हें किसी लड़के से दूर रहने कह रहा हूं तो उसके पीछे कोई तो वजह होगी। क्या तुम मेरी इतनी सी बात भी नहीं मान सकती? नित्या ने धीरे से अपनी पलकों को उठाकर उन्हें देखा और मायूसी से बोली, सॉरी डैड, बट मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। आई नो आप मानव को लाइक नहीं करते क्योंकि वो हमारी जैसी फैमिली से नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा है, मुझे उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। मैं उससे मिलना और बात करना नहीं छोड़ सकती। ऐसा क्या है उस लड़के में कि उसके लिए तुम मेरे खिलाफ जाने के लिए तैयार हो? मिस्टर शेरगिल ने जबड़े भींच लिए। उन्हें एक बार फिर गुस्सा आने लगा था। उनके सवाल पर नित्या मुस्कुराने लगी।
वो आपके जैसा है डैड। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी बहुत केयर करते हैं, लेकिन दिखाते नहीं हैं। वैसे ही वो अपनी केयर को गुस्से के पीछे छुपा लेता है। वो इतना अच्छा है कि उसने तब मेरी हेल्प की थी जब वो मुझे जानता भी नहीं था। मैंने उसे कुछ बताया भी नहीं था, सब झूठ बोला, और वो जानता था। फिर भी वो मुझे अपने घर लेकर गया और मुझे अपने साथ रखा। आपको उसे लाइक नहीं करते, लेकिन वो मुझे हमेशा कहता है कि आप जो कहते हैं वो करूं, आपकी बात मानूं, उसके लिए आपको हर्ट ना करूं, क्योंकि आप मेरे डैड हैं और आप जो बोलते हैं मेरी भलाई के लिए ही बोलते हैं। वो बहुत अच्छा है डैड, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है, और आई भी मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे उनके साथ बहुत अच्छा लगता है। मिस्टर शेरगिल की तनी हुई भौहें धीरे धीरे नॉर्मल हो गईं और वो गौर से नित्या को देख रहे थे। चेहरे पर अजीब से भाव मौजूद थे। वो क्या सोच रहे थे कोई नहीं जानता था। ये कैसे कपड़े पहनकर आई हो तुम? तुम्हारे अपने कपड़े कहाँ हैं? मिस्टर शेरगिल ने उसके कपड़ों को अजीब तरफ से घूरा। नित्या ने सर घुराकर अपने कपड़ों को देखा और सौम्य सी मुस्कान उसके होठों पर ठहर गई। वो चहकते हुए बोली, ये मेरे कपड़े हैं डैड। जब मैं मानव के घर में उसके साथ रहती थी तब वो और आई मेरे लिए लाए थे, मुझे बहुत पसंद हैं। यही सस्ते कपड़े खरीदने की औकात है उसकी, और तुम उस लड़के से रिश्ता रखना चाहती हो। आखिर कमी क्या है तुम में? मैं तुम्हारे लिए एक से बढ़कर एक लड़का ढूंढ कर लाऊंगा, लेकिन मुझे तो सिर्फ मानव चाहिए। आई नो वो हमारी सोसाइटी से बिलोंग नहीं करता, उसके पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन वो एक बहुत अच्छा इंसान है। उसके पास मेरे लिए टाइम होता है, वो मेरा ख्याल रखता है, मुझे प्रोटेक्ट करता है, मुझे अच्छा लगता है उसके साथ। नित्या के जवाब को सुनकर गुस्से से मिस्टर शेरगिल का खून खौल उठा और वो आगे बिना कुछ कहे वहां से चले गए। क्या डैड कभी तुम्हारे और मेरे रिश्ते के लिए मानेंगे? बहुत डिफिकल्ट है, नित्या ने मायूसी से कहा और मुंह लटकाए अपने रूम में चली गई। रूम में आकर उसने अपना फोन निकाला, कॉन्टैक्ट ओपन किया और मानव के नंबर को देखकर मुस्कुराने लगी। उसका मुंह ठीक करने के लिए सिर्फ मानव का ख्याल ही काफी था। इनाया काफी थक गई थी, पूरे रास्ते वो अलसाई हुई सी सीट पर पसरी हुई थी। घर आते ही फ्रेश होने की जगह बिस्तर पर गिर गई। कायरव ने सर हिलाया जैसे कह रहा हो कि इसका कुछ नहीं हो सकता।
कायरव ने अपने कपड़े लिए और बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद फ्रेश होकर चेंज करके बाहर आया और रूम में कदम रखते ही उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाज पड़ी। थोड़ा ध्यान दिया तो समझ आया कि इनाया का फोन वाइब्रेट कर रहा है। कायरव ने इनाया की तरफ नजरें घुमाई जो पूरे बेड पर पसर कर लेटी हुई थी। जैसे फोन बज रहा है, लू है, इन सबसे उसे कोई मतलब ही नहीं है। कायरव ने खुद जाकर उसके पर्स से फोन निकाला और जैसे ही स्क्रीन पर नजर गई वो बुरी तरह चौंक गया। टू बी कंटिन्यूड।